नमस्कार भारत, तारीख 1 जनवरी 2019 दिन मंगलवार। मैं हूँ मानसी दास। यमन में भूखों से खाना छीन रहे हैं विद्रोही, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने लगाया आरोप।
We have seen food being sold in bulk, oil being sold by carton, and a whole load of food is sold.
राज्यसभा में नहीं पेश हो सका 3 तलाक बिल।
बीजेपी का लाना इस बिल को, जबकि उनका रवैया एंटी माइनॉरिटी माना जा रहा है, और वो भी चुनाव से इतना पहले लाना, वो भी सस्पेक्ट हो रहा है।
यूपी में 1 महीने में 2 पुलिस वालों की हत्या, क्या आम लोगों पर रहेगा पुलिस का भरोसा?
सरकार में ये है कि साहब क्रिमिनल गोली चलाएगा तो हम गोली चलाएंगे। डिमोरलाइजेशन तब होता है जब सरकार खुलेआम क्रिमिनल की मदद करती है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। सिडनी, ऑकलैंड, हांगकांग, कुआलालंपुर, दिल्ली, दुबई और पेरिस के बाद अब से कुछ देर पहले लंदन में शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज हुआ। लंदन में टेम्स नदी के किनारे आतिशबाजी देखने दसियों हजार लोग जुटे। पेरिस में आर्क डे ट्रायंफ रंग बिरंगी रोशनी में डूबी रही। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में कड़कड़ाती ठंड के बावजूद दसियों हजार लोग जश्न मनाने रेड स्क्वायर पर जुटे। टीवी पर राष्ट्र के नाम दिए एक संदेश में सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर ने जोर देकर कहा है कि उनके पास देश को आर्थिक संकट से निकालने का रोडमैप है। बशीर ने वादा किया कि साल 2020 में चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। राष्ट्रपति राजधानी खरतूम में राष्ट्रपति महल के भीतर से बोल रहे थे। उन्होंने कहा,
2019
हम नए नजरिए से 2019 का बजट बना रहे हैं। इसका उद्देश्य विकास और मौजूदा संकट से उबारना होगा। निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए पारंपरिक वस्तु प्रणाली की जगह पहली बार कार्यक्रम और नई नीतियां अपनाई जाएंगी। सूडान में कई दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति के महल को भी निशाना बनाया गया है। यहाँ सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई है। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है और दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक 2 सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता ये संख्या दोगुनी बता रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों में जरूरतमंदों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री को चोरी कर खुले बाजार में बेचा जा रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी सना में रह रहे जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि इस मदद को ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो इसके हकदार नहीं हैं। खाद्य सामग्री और खाद्य तेल को चोरी कर खुले बाजार में मुनाफे के लिए भी बेचा जा रहा है। यमन में गृह युद्ध की वजह से भुखमरी के हालात हैं और करीब 2 करोड़ लोग बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोलंबिया में 2 साल पहले फार्क विद्रोहियों के साथ हुए संघर्ष विराम के बाद से कम 85 पूर्व विद्रोही मारे जा चुके हैं। कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर अपनी तिमाही रिपोर्ट में महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि ये हत्याएं अवैध हथियारबंद समूहों या आपराधिक संगठनों ने की हैं जो पूर्व में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। कोलंबिया के मौजूदा राष्ट्रपति इवान डुके विद्रोहियों के साथ हुए शांति समझौते के विरोधी हैं। गुटेरेश ने डुके से पूर्व में विद्रोहियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। गुटेरेश के मुताबिक कोलंबिया में 400 से अधिक सामाजिक नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी की गई हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की वरिष्ठ सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने 2020 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। मैसाचुसेट्स से सीनेटर वॉरेन 2020 चुनावों के लिए खोज समिति गठित करने की घोषणा करके डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने वाली पहली राजनेता बन गई है। अपने गृह राज्य मैसाचुसेट्स में बोलते हुए एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा,
I never thought I would run for anything ever in my life. But America's middle class
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में किसी दौड़ में शामिल होंगी, लेकिन अमेरिका का मध्यम वर्ग खाली हो रहा है और हमारे नौजवानों के लिए मौके खत्म हो रहे हैं, इसलिए मैं इस लड़ाई में शामिल हो रही हूं। ये थे एलिजाबेथ वॉरेन के शब्द। आप सुन रहे थे बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से साल 2019 का पहला रेडियो कार्यक्रम नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। यमन में राहत सामग्री पहुंचा रहे विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि युद्ध के हालातों में फंसे आम नागरिकों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचने दी जा रही। एजेंसी का आरोप है कि विद्रोही खाना चुरा कर उसे लड़ाकों तक पहुंचा रहे हैं या बाजार में बेच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2015 में गृह युद्ध से जूझ रहे यमन में लाखों लोग खाद्य संकट झेल रहे हैं और इनमें से कईयों को यह भी नहीं पता कि उन्हें अगले वक्त का खाना मिल पाएगा भी या नहीं। पूरी रिपोर्ट सुनते हैं दिलनवाज पाशा से।
यमन में राहत सामग्री पहुंचा रहे विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हूती विद्रोहियों से कहा है कि वो अपने कब्जे वाले इलाके में जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचने दे। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के अनुसार हाल के महीनों में की गई समीक्षा में खाद्य सामग्री के बंटवारे में घोटाला होने की बात सामने आई है। राजधानी सना के लोगों तक जरूरी राहत सामग्री नहीं पहुँच सकी है। जिन इलाकों में खाद्य सामग्री बांटी जा रही थी वहाँ से इसे जबरदस्ती हटाकर या तो खुले बाजार में बेचा जा रहा है या फिर उन लोगों को दिया जा रहा है जो इसके ही हकदार नहीं है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की कार्यकर्ता रीम नाडा ने बीबीसी से कहा,
We have seen food being sold in bulk, oil being sold by carton, and a whole load of food is sold.
हमने देखा है कि लोरियों से खाने का सामान और खाने का तेल चुराकर खुले बाजार में बेचा जा रहा है। तेल के कार्टन बेचे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि व्यवस्थित तरीके से राहत के लिए आने वाली खाद्य सामग्री चुराई जा रही है। इस पर वर्ल्ड फूड एड ने जाँच की है और हमारे पास इस बात के सबूत है कि खाद्य सामग्री उन्हें दी जा रही है जो जरूरतमंद नहीं है। ये भूखे लोगों के मुंह से खाना चुराने जैसा है। जांच में यह भी पता चला है कि लाभार्थियों में फर्जी नाम भी जोड़े जा रहे हैं और गलत पतों पर भी सामग्री पहुंचाई जा रही है। एजेंसी के मुताबिक खाद्य सामग्री बांटने के काम में सहायता कर रही कम से कम एक एजेंसी घोटाला कर रही थी। ये संस्था हूती विद्रोहियों के शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। इधर हूती विद्रोहियों ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना कहा है कि वो राहत सामग्री का रास्ता नहीं बदल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक की लड़ाई में कम से कम 6800 आम नागरिक मारे गए हैं और 10,700 से अधिक घायल हुए हैं। इसके अलावा 10,000 नागरिकों की मौत ऐसे कारणों से हुई है जिन्हें रोका जा सकता था। इनमें कुपोषण, बीमारी और भुखमरी शामिल हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने फिर से चुनाव कराने की विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया है। यहां चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के गठबंधन को 300 में से 288 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव पर विपक्ष को क्या आपत्ति है और अब बांग्लादेश के अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते रह सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने ढाका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार बदरुल अहसन से बात की।
शेख हसीना और अवामी लीग फिर सत्ता में आ गई है। तीसरी टर्म है, कंजर्वेटिव टर्म। इससे पहले 96 से लेकर 2001 साल तक शेख हसीना की पहली हुकूमत थी। कल जो इंतखाबात हुए, अपोजिशन ने इन इंतखाबात को रिजेक्ट कर दिया है। वो नए इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। अपोजिशन का कहना है उनके जो पोलिंग एजेंट्स थे, उनके जो कैंडिडेट्स थे, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया और जिसके जरिए वो कैंडिडेट्स कैंपेन नहीं कर पाए। ये भी काफी एलिगेशन आ रहे हैं। ये रूलिंग पार्टी के जो एक्टिविस्ट थे वो खुद ही कंट्रोल कर रहे थे पोलिंग स्टेशन सारे मुल्क में और जिसके जरिए ये इंतखाबात हुए। तो ये जो रिजल्ट अवामी लीग को बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन में ले गया है। लेकिन बात यह है कि अब पार्लियामेंट में जो अपोजिशन होनी चाहिए थी उसके इम्कानात हम देख नहीं पा रहे। सवाल यह है कि जो पार्लियामेंट जब बैठेगी, पहली बात तो ये है कि नेशनल यूनिटी फ्रंट जिनके लीडर डॉक्टर कमाल हुसैन है वो तो कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो अपोजिशन है, जातीय पार्टी और कुछ और पार्टियां हैं, उनके जो नंबर है वो इतने कम है कि वो क्रेडिबल अपोजिशन नहीं हो सकेंगे। तो ये एक फिक्र है आज से लेकर जो नई पार्लियामेंट जब बैठेगी इसी जनवरी में, तो अपोजिशन क्या होगी और हुकूमत का सिचुएशन क्या होगा और नया हुकूमत होगा इसके पॉलिसीज और प्रोग्राम कैसे होगा, पार्लियामेंट में किस तरह के डिबेट होंगे अगर डिबेट होते हैं।
मीडिया ने किस तरह से चुनाव नतीजों के बाद रिएक्शन दिया है?
मीडिया तो ज्यादातर पॉजिटिव तरीके से ये देख रहे हैं। ज्यादातर तो जो बातचीत हो रही है वो काफी पॉजिटिवली ये देख रहे हैं। कुछ क्रिटिसिज्म भी है क्योंकि वो वोटिंग में अपोजिशन के लोग नहीं थे, इलेक्शन कमीशन का जो रोल था वो काफी स्ट्रांग नहीं था, इसके बारे में बातचीत हो रही है। मगर ये सब मान रहे हैं कि जो अवामी लीग इनके जो विक्ट्री है वो लेजिटिमेट विक्ट्री है।
तो जिस तरह के रिश्ते आसपास के मुल्कों से रहे हैं बांग्लादेश के, खासतौर पर भारत से, अब आप क्या देखते हैं, उनमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, किस तरफ जाता हुआ आप देखते हैं?
भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनमें और काफी इजाफा होने वाला है। आपने शायद देखा होगा सार्क ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इन नतीजों को कहा है कि ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है उनके लिए। तो मेरे ख्याल में भारत और जो सार्क मुल्कों के साथ, पाकिस्तान अलग है, बाकी मुल्कों के साथ जो हुकूमत है उनके जो रिलेशंस होगी वो और भी ज्यादातर मजबूत होगी, खास करके भारत के साथ। भारत और बांग्लादेश के दरमियान अभी कुछ मामले हैं, कुछ मसले जैसे तीस्ता पानी के जो शेयरिंग के, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश हुकूमत को इन इंतखाबात के बाद शेख हसीना की पोजीशन और भी मजबूत होगी, वो और सख्ती के साथ वो भारत के साथ निगोशिएट कर सकती है।
चुनावों के बाद अब बांग्लादेश के भारत के साथ संबंध कैसे होंगे, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार बदरुल अहसन।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
कार्यक्रम में अब रुख भारत का। राज्यसभा में कल एक साथ तीन तलाक देने से जुड़ा बिल पेश नहीं हो सका। कांग्रेस और विपक्ष इसे पहले सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा इस बिल को पास कर चुकी है, लेकिन इसे कानूनी शक्ल देने के लिए इसका राज्यसभा में पास होना जरूरी है। आखिर बिल को लेकर इतना तनाव क्यों है? बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने यही सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से।
मेन वजह तो ये है कि मुस्लिम समुदाय को ये पसंद नहीं आ रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को नल एंड वॉइड करार दे दिया था, लेकिन उसमें आगे जाके पीनलाइज करना, 3 साल की सजा, बीजेपी ने उसमें अमेंडमेंट्स कुछ किए हैं लास्ट ईयर के बिल के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल मुस्लिम समुदाय को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो क्रिमिनलाइज कर दिया है, दूसरा बीजेपी का लाना इस बिल को, जबकि उनका रवैया एंटी माइनॉरिटी माना जा रहा है, और वो भी चुनाव से इतना पहले लाना, वो भी सस्पेक्ट हो रहा है, और जिन जिन पार्टीज की बेस है माइनॉरिटीज, उनको इस समय लग रहा है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, उसका विरोध कर रहा है।
अगर सरकार बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजती है तो इस बिल का भविष्य क्या होगा?
देखिए, इस बिल का स्टेटस के बारे में किसी साइड को परवाह नहीं है। एक्चुअली बीजेपी दिखाना चाहती है कि हमने कोशिश की, और पार्टियां विरोध की जो हैं वो माइनॉरिटीज के साथ खड़ी हुई दिखे, ताकि उनको एंटी हिंदू कार्ड दे दिया जाए और हिंदू को कंसोलिडेट करने में एक और चीज की मदद मिले उन्हें, जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स उनको हेल्प करती आई है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, अब वो खेल रही हैं ट्रिपल तलाक के द्वारा, और भी उनकी आर्मरी में और भी चीजें हैं, जिस तरह से मंदिर है। विरोधी पार्टियां खुल के नहीं अपोज कर रही हैं, क्योंकि विमेन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी भी, लेकिन ये क्रिमिनलाइज बिल को नहीं करना चाहिए, सिविल ऑफेंस है, और इन एनी केस सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड तो कह दिया है, तो बिल की क्या जरूरत है। कुल मिला के ये स्टैंड है, और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां अपने स्टैंड को भुनाएंगी इलेक्शन में अगर जरूरत पड़ेगी, तो बिल का क्या फेट होता है, क्या भविष्य होता है, इस समय मुझे नहीं लगता किसी को परवाह।
क्यों पेश नहीं हो सका तीन तलाक बिल, विश्लेषण कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां एक महीने के भीतर भीड़ के हाथों 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि ऐसे हालातों में आम लोगों पर पुलिस का भरोसा कितना कायम रह सकेगा। जानकार मानते हैं कि ये हालात आम जनता और पुलिसकर्मियों के मनोबल दोनों के लिए ठीक नहीं है, साथ ही इस तरह के हमलों के कारण पुलिसकर्मियों के परिवारों में भी कहीं न कहीं दहशत की स्थिति है। सुनिए लखनऊ से हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
पुलिस वालों को ही टारगेट हर जगह क्यों किया जा रहा है, अभी बुलंदशहर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर अभी मेरे पिताजी को बताइए, मतलब पुलिस वालों की फैमिली नहीं होती है, बस मुआवजा दे देंगे, मुआवजे से क्या हो जाएगा।
2 दिन पहले गाजीपुर में भीड़ के हाथों मारे गए कांस्टेबल सुरेश वत्स के बेटे विनीत वत्स ये सवाल कर रहे हैं। उनका ये सवाल न सिर्फ उस भीड़ से है जिसने उनके पिता की हत्या कर दी, बल्कि उस व्यवस्था से भी है जिसमें आम आदमी के अलावा एक पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। विनीत वत्स का सवाल सिर्फ अपने पिता की मौत पर ही नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं की श्रृंखलाबद्ध पुनरावृत्ति से है जो कुछ समय से लगातार हो रही हैं। ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाती ही हैं, बल्कि ये सवाल भी उठाती हैं कि जहां पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, वहां आम आदमी कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। उत्तर प्रदेश में कई अहम पदों पर रहे अवकाश प्राप्त आईपीएस अधिकारी डॉक्टर वीएन राय कहते हैं,
हर सरकार दावा करती है कि बस वो अपराध का सफाया कर देगी, लेकिन ये जो इस समय सरकार है उसको थोड़ा गलत एक्सट्रीम पर जाके गलत काम कर रही है कि पुलिस को हथियारों का एक गिरोह बना रही है। ये जो तथाकथित एनकाउंटर है, जो गैर कानूनी तरीके से हत्याएं हैं, इसको कभी एनकरेज नहीं करना, कभी इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पुलिस को एक कानून का सम्मान करने वाली जनता की दोस्त और ऐसी संस्था में परिवर्तित किया जा रहा है जिसकी संविधान में और कानून में जिसकी आस्था हो। जब आप ये कहते हैं कि अपराधियों को पकड़ के मार दो, तो इसका मतलब आप तो उस कानून से उसी का विश्वास खत्म कर रहे हैं, फिर जनता का विश्वास कानून में कैसे आएगा।
बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और फिर गाजीपुर में कांस्टेबल सुरेश वत्स की भीड़ के हाथों हुई हत्या ने पुलिसकर्मियों के भीतर भी जैसे डर पैदा कर दिया है। पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी खुलकर तो इस मामले में कुछ नहीं कहते, लेकिन इस मुद्दे पर उनसे बातचीत के बाद ये साफ पता चलता है कि वो खौफ में हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति पुलिस के मनोबल को नीचा कर देंगी। लेकिन यूपी के डीजीपी रहे और फिलहाल राज्य SC/ST आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजलाल कहते हैं कि पुलिस का मनोबल इन घटनाओं से नहीं बल्कि पिछली सरकारों में जो कुछ हुआ उससे प्रभावित होता है।
नहीं, इसमें कार्रवाई हुई है, बड़ी घटना है, लेकिन डिमोरलाइजेशन नहीं हुआ है इससे, क्योंकि इस सरकार में ये है कि साहब क्रिमिनल गोली चलाएगा तो हम गोली चलाएंगे। अपराधी मरे हैं, लोग वहाँ अपनी जमानत कटा करके वेस्टर्न यूपी खासकर जिलों में घुस गए, तो वो चीजें, तो इससे डिमोरलाइजेशन तब होता है जब सरकार खुलेआम क्रिमिनल्स की मदद करती है। जैसा कि आपकी जब डीजी सर्विंग डीजी खिलाफ, दो SP DSP के खिलाफ, IB सबके खिलाफ 42 लोगों का मर्डर का मुकदमा कायम करेंगे, सरकार जब क्रिमिनल को आतंकवादी को समझ देती है, ये करती है, तब डिमोरलाइजेशन होता है। वैसे नहीं।
डॉक्टर ब्रजलाल पिछली सरकारों में हुई कुछ घटनाओं का उदाहरण भी देते हैं, खासकर वो कथित तौर पर अपराधियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की सरकारों की प्रवृत्ति को भी पुलिस के मनोबल को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि ये सारी प्रवृत्तियां इस सरकार में भी नहीं बदली, जिसकी वजह से पुलिस वाले और उनके परिजन भी दहशत में हैं।
ये लोगों का विश्वास पूरे सिस्टम से उठ गया है, इसलिए भी लिंचिंग हो रही है। किसी भी समुदाय की, किसी भी आदमी की, किसी भी इलाके में होती तो आसपास दहशत तो फैल ही जाती है। मारने वाले और मरने वालों के अलावा बाकी सब लोग दहशत में जीते हैं। तो अगर पुलिस के साथ भी लिंचिंग हो रही है तो पुलिस भी दहशत में जिएगी, ये उसका मनोविज्ञान भी और यथार्थ भी है। जैसे पुलिस को कहीं थप्पड़ मार दिया जा रहा है, कहीं डिप्टी SP को कहा नेता ने कि हम तुम्हारा वर्दी उतार, मतलब ऐसे तमाम बातें हैं। इन बातों के चलते पुलिस को लग रहा है कि सरकार का बदलने का जो उनको एहसास था वो नहीं हो रहा पुलिस को।
वहीं दूसरी ओर अपराधियों पर लगाम लगाने के सरकारी दावों की हवा तब निकल जाती है जब आए दिन तमाम तरह के अपराध होते रहते हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि इसके लिए पुलिस का राजनीतिकरण और खुद पुलिस वालों का राजनीतिक खेमेबाजी में बटना भी कम जिम्मेदार नहीं है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ें, उससे पहले जानते हैं अखबारों में आज क्या कुछ खास छपा है। दिलनवाज पाशा अखबारों के पन्ने पलटकर स्टूडियो में आ गए हैं, जानते हैं उनसे आज किन खबरों को मिली है पहले पन्ने पर जगह।
जी, नए साल का पहला दिन है और दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है अंतरिक्ष से दुनिया की में सूर्योदय की तस्वीर और लिखा है, पृथ्वी पर जहां रोज सूर्य की पहली किरण पड़ती है ये तस्वीर वहां की है। स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री का संदेश भी प्रकाशित किया है जिसमें लिखा है, दुनिया नए साल का जश्न मना रही होगी, हम पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होंगे, हम खुश नसीब हैं कि यहाँ से पृथ्वी को बिना सीमाओं के वाले ग्रह के रूप में देख सकते हैं।
जी, खूबसूरत संदेश।
जी बिल्कुल। और इसके अलावा 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में अटक गया है, ये खबर हर अखबार के पहले पन्ने पर है और यही शीर्षक अखबारों ने लगाया है। कल भारतीय सेना ने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया और ये खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, उड़ी अटैक दोहराने की कोशिश में पाकिस्तान के कमांडो मारे गए। इसके अलावा जिक्र करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर का जिसके मुताबिक असम में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की डेडलाइन ख़त्म हो गई है और 30 लाख लोगों ने इसमें अपने नाम शामिल करने का दावा किया है। करीब 40 लाख लोगों को NRC से बाहर रखा गया था। इसके अलावा बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक तरफा बड़ी जीत आम चुनावों में हासिल की है। 298 में से 288 सीटें उनकी पार्टी ने जीती हैं और ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने 1984 के दंगों के में सजा मिलने के बाद
वाला मामला था
जी बिल्कुल और आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है, ये खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दिए समर्थन पर पुनर्विचार किया जा सकता है अगर दलितों के खिलाफ मुकदमे वापस नहीं हुए, उनके इस बयान को भी सभी
कई अखबारों ने इस बयान को आज अपने में अपने पहले पन्ने पर छापा है
जी बिल्कुल, प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया है जी मानसी।
अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए शुक्रिया दिलनवाज।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब वक्त है दो खास रिपोर्ट का। भारत प्रशासित कश्मीर के लिए 2018 बेहद चुनौती भरा रहा। राजनीति के मोर्चे पर गठबंधन सरकार की विदाई हुई और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। साल भर हिंसा का दौर भी जारी रहा। 2019 से घाटी को क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं माजिद जहांगीर।
चरमपंथ से जुड़ी 587 घटनाएं, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 250 चरमपंथियों की मौत और इनके अलावा करीब 52 आम नागरिक और 87 सुरक्षा बलों की मौत। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 कुछ इस तरह रहा जम्मू कश्मीर के लिए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़े 500 के करीब बताए गए हैं। चरमपंथ हिंसा के लिहाज से 2018 जम्मू कश्मीर न सिर्फ उथल पुथल भरा रहा बल्कि सियासी मंच पर भी ये सोबा राजनीति की स्थिरता की तलाश करता रहा। अब जबकि 2018 ने कश्मीर के गांवों दरगाहों में दर्द की कहानियां बिखेर के रख दी तो अब नया साल शुरू होने पर आम कश्मीरी इन चुनौतियों के बीच क्या सोच रहा है। एक आम कश्मीरी मोहम्मद मुराद कहते हैं,
हम उम्मीद करते हैं कि 2019 हमारे लिए अमन लाए और एनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए और खून खराब आना होना चाहिए 2019 में। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा ये वाला साल।
साल 2018 शुरू होते ही जम्मू के कठुआ में बकरवाल समुदाय के एक 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण के बाद सामूहिक बलात्कार किया गया और जिसके बाद बच्ची की हत्या की गई। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक हालात तनावपूर्ण रहे। राज्य में जारी हिंसा के बीच राज्य की सियासी तस्वीर ही बदल गई। 19 जून को अचानक बीजेपी ने अपनी सहयोगी पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में महबूबा मुफ्ती की नेतृत्व में पीडीपी बीजेपी सरकार टूट गई। सरकार टूटने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया। राज्य में 6 महीने तक चलने वाला राज्यपाल शासन 19 दिसंबर को समाप्त हो गया। राज्य में करीब 21 साल के बाद 20 दिसंबर को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक बशीर मंजर कहते हैं,
2018 कश्मीर में बड़ा ही हंगामा खेज रहा, सियासी सतह पे भी, मिलिटेंसी की सतह पे भी, सिक्योरिटी सतह पे भी, हर एक लिहाज से बड़ा ही हंगामा खेज रहा। लेकिन 218 में हमने इस अलायंस को बुरी तरह टूटते हुए देखा। बीजेपी ने साथ वापस ले लिया और इस तरह पीडीपी और बीजेपी की सरकार टूट गई और फिर आखिर पे गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दी।
जम्मू कश्मीर में साल 2018 इस लिहाज से भी अहम रहा कि राज्य में पंचायती और निकाय चुनाव भारी सुरक्षा के बीच करवाए गए। राजनीतिक उथल पुथल के अलावा कश्मीर में साल 2018 में देखा गया कि नौजवानों का चरमपंथी सफों में शामिल होने का रुझान बढ़ता गया। पुलिस के पूर्व डीआईजी अली मोहम्मद वटाली,
जो बड़े निचे नौजवान है वो भी मिलिटेंसी में शामिल हुए पहली बार इसी साल के दौरान, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है।
बीते नवम्बर को एक विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उस वीडियो में चरमपंथी एक व्यक्ति का रेत कर हत्या करते हुए दिखाया गया था। एक दूसरी तस्वीर बीते दिसंबर को सामने आई थी। ये तस्वीर थी एक 14 साल के चरमपंथी की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मरने की। 14 साल के इस चरमपंथी को लेकर कश्मीर में काफी उथल पुथल रही। जहां इसके लिए सुरक्षा बलों की आलोचना हुई तो दूसरी तरफ ये सवाल भी उठते रहे कि चरमपंथियों ने 14 साल के बच्चे को अपनी सफों में शामिल क्यों किया था। गौहर गिलानी कहते हैं,
तो ये दोनों चैलेंज है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी और उनके लिए भी जो एंटी स्टेट तहरीक में जो मुजाहिमत पसंदीगी मुजाहिमत कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैलेंज है कि आप इस लड़ाई में जुवेनाइल्स को और टीनेजर्स को क्यों धकेल रहे हैं।
साल 2018 में कश्मीर की जमीन पर खून की कहानियां और राजनीतिक उथल पुथल की चुनौतियां लिखी और देखी गईं। लेकिन अब साल 2019 में कश्मीर की जमीन पर किन बातों और मुद्दों की इबारत होगी, अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
अब बात 1 जनवरी 48 में हुए एक गोलीकांड की घटना की। आज के झारखंड में मौजूद जमशेदपुर के नजदीक है आदिवासी बहुल कस्बा खरसावां। भारत की आजादी के करीब 5 महीने बाद खरसावां में नए साल के मौके पर कई आदिवासी पुलिस की गोली से मारे गए थे। आदिवासी इतिहास के जानकार बताते हैं कि वहां सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। 1 जनवरी 1948 के दिन खरसावां में क्या हुआ था और क्यों हुआ, सुनिए हमारे सहयोगी मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
1 जनवरी 1948 को दिन था गुरुवार और उस दिन खरसावां में साप्ताहिक हाट का भी दिन था। आदिवासियों के सबसे बड़े नेताओं में से एक और भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जयपाल सिंह मुंडा के आह्वान पर लोग सरायकेला और खरसावां रियासत के उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध करने वहां जुटे थे। उड़ीसा सरकार ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया था। खरसावां में जयपाल सिंह और अलग झारखंड राज्य का नारा लग रहा था। वहां हजारों आदिवासियों की भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस ने एक लकीर खींचकर उसे पार नहीं करने को कहा। नारेबाजी के बीच लोग समझ नहीं पाए और अचानक गोली की आवाज आई। झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने बीबीसी को बताया,
बहुत संख्या में घायल भी हो गया, बहुत कुछ इतना पटो बेहसा मारा गया आदमी। अब सवाल है इतने लाश लोग जाएंगे तो वहाँ पर अभी जो शहीद स्थल जो बना है वहाँ एक बहुत बड़ा कुआं रहा, बहुत बड़ा कुआं, जितने वहाँ पर छोटे बड़े इतने लाश जो मिला, लाश को कितना फेंकेगा, तो कुएं में डाल गया और कुछ और डाल कर वहाँ से मट्टी से भर दिया गया।
खरसावां गोलीकांड आजाद भारत का पहला बड़ा गोलीकांड माना जाता है। तब के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने घटना में मारे गए लोगों की संख्या 35 बताई, लेकिन इस घटना में कितने लोग मारे गए इस पर अलग अलग दावे हैं और इन दावों में भारी अंतर है। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा की किताब झारखंड आंदोलन के दस्तावेज शोषण संघर्ष और शहादत में इस गोलीकांड पर अलग से एक अध्याय है। इसमें वे लिखते हैं कि पूर्व सांसद और महाराजा पी के देव की किताब मेमोयर ऑफ ए बायगॉन एरा के मुताबिक इस घटना में 2000 लोग मारे गए थे। अनुज सिन्हा के मुताबिक देव की किताब और घटना के चश्मदीदों के विवरणों में बहुत समानता दिखती है। समाज सेवी रजब अली से मेरी मुलाकात खरसावां चौक पर हुई। गोलीकांड के वक्त उनकी उम्र करीब 15 साल थी। गोलीबारी के दौरान वे घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर कब्रिस्तान के पीछे थे। गोलीकांड के कुछ दिनों बाद के एक वाक्य को उन्होंने कुछ इस तरह याद किया।
उड़ीसा का हुकूमत थी, उड़ीसा के गवर्नमेंट मंत्री लोग आए थे। अच्छा हाँ, फिर उड़ीसा गवर्नमेंट कपड़ा लाया था राजगांगपुर से, मोटा मोटा कपड़ा जहाज जहाज बांटने के लिए। आदिवासी लोग इनकार कर लिया कि कपड़ा लोग नहीं लिया, तो उन लोग के दिल में ये हो कि ये सरकार हम लोग का गोली चलाए, इसका कपड़ा क्यों लेंगे। हाँ, घटना के बाद 2-3-8 दिन के अंदर में देने का एक तो होता है ना, एक तो सरदार दिखाने के लिए।
घटना के बाद पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई। उन दिनों देश की राजनीति में बिहार के नेताओं का अहम स्थान था और वे भी यह विलय नहीं चाहते थे। ऐसे में इस घटना का असर ये हुआ कि इलाके का उड़ीसा में विलय रोक दिया गया। समय के साथ गोलीबारी वाली जगह खरसावां शहीद स्थल के रूप में मशहूर हुई, जिसका आदिवासी समाज और राजनीति में बहुत जज्बाती और अहम स्थान है। 1 जनवरी को शहीद स्थल पर आदिवासी रीति रिवाज से पूजा की जाती है। विजय सिंह बोदरा शहीद स्थल के पुरोहित हैं, उनका परिवार ही यहाँ पीढ़ियों से पूजा कराता आ रहा है। विजय ने बताया,
उस दिन शहीदों के नाम से पूजा पाठ किया जाता है और भी लोग आते हैं, उसका श्रद्धांजलि देते हैं। उनको हम लोग घर में खिचड़ी बना के ले आते हैं, उसके बाद चावल का ही तो हम लोग राशि बोलते हैं, उसी का पूजा किया जाता है वहाँ पर। जब आदमी जब मर जाता है ना, मरने के बाद जो उसका आत्मा नहीं, वो हम लोग शशान बोलते हैं, उसी में वो तेल को चढ़ाया जाता है।
खरसावां हाट के एक हिस्से में आज जहाँ शहीद स्मारक है, उसे अब पार्क में भी तब्दील कर दिया गया है। हर साल यहाँ झारखंड के करीब सभी बड़े दल और आदिवासी संगठन कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी खरसावां चौक कई दलों के होर्डिंग और बैनर से सज चुका है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी, खरसावां।
और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। सिडनी, ऑकलैंड, हांगकांग, कुआलालंपुर, दिल्ली, दुबई और पेरिस के बाद अब से कुछ देर पहले लंदन में शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज हुआ। टीवी पर राष्ट्र के नाम दिए एक संदेश में सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर ने जोर देकर कहा है कि उनके पास देश को आर्थिक संकट से निकालने का रोडमैप है। बशीर ने वादा किया कि वो साल 2020 में चुनाव करवाएंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों में जरूरतमंदों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री को चोरी करके खुले बाजार में बेचा जा रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।